ओम शांति। सभी चारों ओर सब भाई बहने बोलो ओम शांति। कितना सुंदर डायमंड हॉल का ये दृश्य है, कितनी पवित्र आत्माएं इस स्थान पर तपस्या करने के लिए पहुंची हैं। बाबा वतन से देख करके कितना हर्षित हो रहा है। एक एक बाबा का बच्चा बाबा का राइट हैंड है। सभी समझते हो कि हम राइट हैंड हैं, वैसे हैंड्स दोनों प्रकार के जरूरी होते हैं, लेफ्ट भी चाहिए राइट भी चाहिए। लेकिन जो हर कार्य में सहयोगी होते, जो हर श्रेष्ठ कार्य में आगे नंबर लेते, उनको राइट हैंड माना जाता है। तो इतने सब बाबा की पवित्र प्रवृत्ति की आत्माएं, युगल मूरत जो बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं, साकार में बाबा जब ऐसे युगल मूर्त को देखता था, इतनी पवित्र आत्माएं घर ग्रस्त में रह करके जो चैलेंज करती हैं कि हमने विकारों को जीता है, व्यसनों और बुराइयों पर विजय प्राप्त की है, वो सबसे श्रेष्ठ और महान आत्माएं हैं। तो इस संगठन में आज जो भी उपस्थित हैं, मैं समझता हूं हर एक को ये नशा होगा कि पूरे विश्व में से चुने हुए हम सब रतन महान आत्माएं महात्माओं से भी श्रेष्ठ पवित्र और योगी हैं। है नशा जो समझते हैं कि हम सबको ये नशा रहता है, हाथ उठाओ सब देखें। अच्छा वाह, ऐसी पवित्र आत्माओं का ये सुंदर संगठन जिसके बल पर आज हमारा ये यज्ञ टिका हुआ है और आगे बढ़ता जा रहा है। जिस बात को लोग असंभव समझते हैं, आप सबने वो संभव करके दिखाया है। कोई भी नई दुनिया में ऐसा होगा, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, कोई का भी फॉलोअर हो, गुरु की धारणाएं अलग होंगी और फॉलोअर्स की अलग होंगी। लेकिन यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसमें समर्पित भाई और बहनें अथवा प्रवृत्ति की आत्माएं, दोनों की एक जैसी धारणाएं हैं। तो यज्ञ स्नेही और सहयोगी के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको ये टाइटल देना चाहता हूं। बाबा हमेशा कहता है ये मेरे बच्चे यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। समझते हो आप सभी कि हम यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले भी बहुत होते। अगर कोई आत्माएं किसी भी कारण से ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का उल्लंघन करती हैं, माया के वशीभूत होकर अधीन बनकर कोई विकर्म करती हैं, श्रीमत की अवज्ञाएं कर लेती हैं, तो यज्ञ में विघ्न रूप बन जाती हैं। लेकिन अगर वो अपनी संपूर्ण धारणाओं में चलती हैं, सदा सकारात्मक चिंतन रखती हैं, बाबा उन्हें प्राइज देता है। आज बाबा ने ये स्लोगन में कहा है कि जो मेरे बच्चे व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त रहते हैं उन्हें परमात्म अवार्ड मिल जाता है, व्यर्थ भी आत्मा को टच न कर सके। समझते हो आप सभी, यज्ञ रक्षक वही है जो व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त रहते हैं। कितनी भी व्यर्थ बातें हों, कलयुग के अंदर कितने भी नेगेटिव दृश्य सामने आए, लेकिन महान आत्माओं के आगे व्यर्थ और नेगेटिव बातें आ ही नहीं सकती, और अगर आती भी हैं तो उनको खेल खेल में पार कर लेते हैं। जो बच्चे बाबा के अपना ये संगम का अमूल्य समय व्यर्थ और नेगेटिव बातों में जाने नहीं देते, वो बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। आप सब समझते हो कि हम ऐसे यज्ञ रक्षक हैं जो कोई भी व्यर्थ को भी अलाउ नहीं करते, पर चिंतन पर दर्शन पर मत्थे जो आत्मा मुक्त है वो यज्ञ रक्षक कहलाती है। और अगर उसके अंदर रहती है वही चक्कर चलता रहता है तो व्यर्थ और व्यक्त, ये दो बातें यज्ञ में सबसे बड़े विघ्न रूप में बनती हैं। जहां पर व्यक्त और व्यर्थ बातें होती हैं वहां का वातावरण साधारण हो जाता है, वहां माया को प्रवेश करने में मेहनत नहीं लगती। इसलिए बाबा ने एक बार हंसी में मुरली चलाई थी कि मैं अपने प्रवृत्ति वाले बच्चों के घरों में कभी कभी चक्कर लगाता हूँ। आप सब समझते हो कि बाबा हमारे पास चक्कर लगाने आता है, वो क्या बातें करते हैं, सोने के समय कौन सी रूह रिहान आपस में करते हैं, किस तरह की वार्तालाप घर में चलती है, वो बाबा वतन से देखते आप सबके पास भी कभी कभी आ जाते हैं। ध्यान रहता होगा कि बाबा हमारे ग्रस्त आश्रम जिन्होंने बनाए हैं, जिनकी पवित्र प्रवृत्ति है, शुद्ध प्रवृत्ति है, जो एक एक चलते हैं उनके लिए तो कह नहीं सकते, उनके आगे तो बड़े विघ्न हैं, बड़ी रुकावटें हैं। लेकिन आप इतनी भाग्यवान आत्माएं हो जो दोनों पहिए एक मत हो, और दो पहिए की गाड़ी बहुत फास्ट स्पीड में जा सकती है। दो पहिए की गाड़ी है ना कि एक ही है, जिनकी एक ही है वो तो लड़खड़ाएगी, कोई आगे कोई पीछे हो जाएगा, लेकिन जो दोनों रेस करते हैं इस संगम पर तीव्र पुरुषार्थ में, वो बहुत फास्ट स्पीड में आगे जा सकते हैं। तो हम सब के लिए बाबा ने ये बेहद का यज्ञ रचा। कब रचा? जिस दिन से बाबा की प्रवेशता हुई, शिव बाबा इस सृष्टि मंच पर अवतरित हुए, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, यज्ञ की स्थापना हो गई। यज्ञ क्यों रचा? आपदाओं को, कलयुगी सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। उस रुद्र भगवान ने स्वयं आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, और उसमें ब्राह्मण आत्माओं को सेवा के निमित्त बनाया। स्नेही और सहयोगी आत्माएं अपने मन वचन कर्म, तन मन और धन के सहयोग से इस यज्ञ को सदा भरपूर रखती हैं, यज्ञ की हर आवश्यकता में सदा आगे रहती हैं। बाबा उनको कहता है ये मेरे वारिस बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं, गुप्त बच्चे हैं। आप सब समझते हो कितना बड़ा यज्ञ है, जो कैसे धीरे धीरे विस्तार को पाया है। 42 साल का इतिहास तो मेरे पास ही है, 75 साल वाले भी बहुत हैं, पुराने पुरानी दादियां, पुराने भाई भी हैं जिनके पास और भी बेगरी पार्ट की कहानियां हैं, कैसे बाबा ने एक छोटे से स्थान से यज्ञ की शुरुआत की। यज्ञ में आने वाले वत्स, यज्ञ में समर्पित होने वाले बच्चे तन मन से स्वाहा हो गए। स्थूल में कोई अश्व को स्वाहा नहीं किया, वो यज्ञ रचते हैं तो उसका नाम देते हैं अश्वमेध यज्ञ, और यज्ञ में घोड़े को स्वाहा कर देते हैं। बाबा ने इस अश्व को इस यज्ञ के अंदर स्वाहा करा दिया। आप सब ऐसा समझते हो कि मैंने इस अश्व को बाबा के इस यज्ञ में स्वाहा किया है, कहेंगे हम कहाँ किया है, समर्पित हैं वो कह सकते हैं, हम तो अपनी अपनी प्रवृत्ति में रहते हैं। लेकिन मन से भी समर्पित हुआ जा सकता है, भले आप अपनी प्रवृत्ति में रहो, लेकिन जिसने बाबा को अपनी सब संपत्ति, अपनी सब चीजें अर्पित कर दी, मन वचन कर्म तन मन धन, भक्ति के अंदर तो आपने सबने गाया है, हे प्रभु ये सब तेरा है, ये सब तेरा है, कुछ नहीं मेरा है, वो तो मूर्ति के आगे कहा, चित्र जड़ चित्रों के आगे कहा था, अभी वो चैतन्य में हिसाब लेने के लिए आ गया, वो कहता है जो तुमने कहा है ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, ना लागे कुछ मेरा है ऐसा सबका कि अभी तक है, जिन्होंने मेरा मेरा को स्वाहा किया है वो हाथ उठाओ, है? किया है, नहीं नहीं उठ रहे हैं हाथ। विचार करना, यज्ञ में कोई भी स्थूल घी तेल या जौ तिल स्वाहा करने की जरूरत नहीं है, वो यज्ञ नहीं रचा है, ये ज्ञान यज्ञ अविनाशी यज्ञ है। और यज्ञ नाम इसीलिए दिया जाता है, यज्ञ में अग्नि होती है, यज्ञ के अंदर अग्नि के अंदर कोई भी चीज जाती है वो समाप्त हो जाती है, स्वाहा हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। तो बाबा ने जो ये ज्ञान यज्ञ रचा, इसमें इतनी पवित्र आत्माओं की लगन की अग्नि प्रज्वलित है, और इस लगन की अग्नि के आगे कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। तो आप सभी लगन की अग्नि को तो जानते ही हैं, लगन माना बाबा से दिल का प्यार, और जिसका बाबा से प्यार है उसकी दो निशानियां विशेष होंगी। बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार, बाबा की मुरली से प्यार करने वाला एक दिन भी बाबा की मुरली को मिस नहीं कर सकता। तो ऐसे सभी बैठे हैं जो बाबा की मुरली कभी भी मिस ना हो, कुछ भी हो जाए। हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जिस दिन से बाबा के बच्चे बने एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं की, ऐसा जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है अभी तक, बहुत थोड़े होंगे मैं समझता हूँ, कभी बीमार पड़ गए, कभी बाहर चले गए, कोई कारण बन गया, कभी न कभी तो बाबा की मुरली मिस होती है। लेकिन हैं ऐसे कोई बाबा के बच्चे, लाल हाथ उठाओ देखें कितने हैं, अच्छा काफी उठा रहे हैं, लेकिन 10% हैं, 100% नहीं है। ड्रामा अनुसार मुझे तो बाबा ने मुरली से खेलने का भाग्य दिया, मैं तो चैलेंज से कहता हूँ 42 साल में मेरी कोई मुरली मिस नहीं हुई। क्योंकि आपके पास भेजना है, टाइप करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन निकालना है, वरदान तैयार करना है, तो मुरली तो पढ़नी पड़ेगी ना। लेकिन सचमुच बाबा की मुरली से प्यार माना बाबा से प्यार, बाबा की एक एक बात दिल में उतर जाए, बाबा ने कहा बच्चे ने किया, बाबा की चाहनाएं ही बाबा की आवाज में मुरली में हैं। कोई दूसरी श्रीमत नहीं है, मुरली ही श्रीमत है। मुरली की अच्छी तरह से स्टडी करने वालों को हर बात का उत्तर मिल जाता है। इसलिए बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार, बाबा से प्यार माना बाबा के बेहद घर से प्यार। ये बेहद घर यज्ञ है, बाबा इसको नाम देते हैं यज्ञ कुंड। कुंड होते हैं ना यज्ञ के, उन कुंड को भरना पड़ता है। इस यज्ञ कुंड को भरना, जो चीज जिसकी आवश्यकता हो वो पूर्ति कर देना, वो यज्ञ स्नेही बच्चों का कार्य है। जो अपने को समझते हैं कि मैं बाबा के यज्ञ का बहुत हितैषी हूँ, बहुत स्नेही हूँ, बाबा के घर में जो आवश्यकता है मैं हाजिर हूँ, उनको बाबा कहता है ये मेरा यज्ञ स्नेही वारिस बच्चा है। बहुत समय तक बाबा की ये मुरलियां चली हैं, आप सबने ध्यान दिया होगा। बाबा कहता है मेरे बच्चे वारिस निकालो, वारिस निकालो, वारिस निकालो। वारिस माना यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी। जहां पर भी कोई ऐसी चीज दिखाई देती, जैसे परिवार के प्रति हमेशा ख्याल रहता है, परिवार में कोई चीज की कमी है तो माँ बाप को रहता है, फिकरात रहती है, ये चीज घर में आनी चाहिए, इसकी जरूरत है, आवश्यकता है। संगम युग पर बाबा ने आप सबको ये बेहद का घर, बेहद का यज्ञ रचा है। सेंटर छोटे छोटे यज्ञ हैं, लेकिन मधुबन बहुत बड़ा बेहद का यज्ञ है। और बाबा कहते हैं ये यज्ञ मैंने रचा है, पूरी दुनिया को इसमें स्वाहा होना है, सारी दुनिया की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। तो आप समझ सकते हो कितने भाग्यशाली आत्माएं हो। जब तक सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा हो, आपने जीते जी पहले ही अपना सब कुछ स्वाहा कर लिया। इसलिए दिल से निकलता है बाबा ये सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। रहो घर में लेकिन ट्रस्टीशिप की भावना, ट्रस्टी माना ईमानदार, विश्वास पात्र। एक भी पैसा बाबा की श्रीमत के अनुकूल नहीं खर्च हो सकता। अगर श्रीमत नहीं है तो वो एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। ट्रस्टी वो है जो बाबा की अमानत समझ करके इस तन को यूज करे, ये उसकी अमानत है। कहीं गलत संग में नहीं जा सकता, कहीं गलत व्यवहार में नहीं लग सकता, किसी गलत स्थान पर नहीं जा सकता, ये तन उसका है। ये पैर उधर नहीं उठ सकते हैं जहां पर गलत बातें हो रही हों, जहां व्यर्थ चिंतन हो रहे हों। ये तन वहीं जाएगा जहां बाबा की श्रीमत है। इसलिए सदा ध्यान रखना, ये तन बाबा की अमानत है और बाबा की सेवा के लिए है। जहां सेवा है वहां हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं वो सदा समझते हैं कि हम सदा अपने आप को फर्स्ट नंबर में ऑफर कर दें, ऑफरिंग मिल जाएगी। कोई भी सेवा हो, केवल ज्ञान सुनाने की सेवा सेवा नहीं है, तन की सेवा कर्मणा सेवा में आती है। और हमने देखा है जिस सेवा केंद्र पर प्रवृत्ति में सब लोग ज्ञान में चलते हैं, उनकी माताएं उस परिवार से निर्बंधन होकर के बाबा के यज्ञ में सदा हाँ जी करके सेवा में हाजिर हो जाती हैं। घर में भले दो लोगों की रोटी बनाने में थकावट होती हो, लेकिन बाबा के घर में आकर के वो हजारों का भोजन बना लेती है, उसमें थकावट नहीं होती। तन उनका यज्ञ में सफल हो, ये बहुत ऊंची भावना रहती है। तो यज्ञ स्नेही बच्चे सदा चांस लेने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सहयोग मैं कब दे दूं, कहां पर मेरा सहयोग बाबा के काम में लग जाए। क्योंकि अगर ये तन बाबा की सेवाओं में लग गया, पता क्या होगा, ये सहज निरोगी बन जाएगा, ये सब कर्मेंद्रियां सहज शीतल हो जाएंगी, ये उत्तेजित नहीं होंगी। दो चीजें नुकसान कर रही हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। एक उत्तेजना, आवेश जिसको हम कहते हैं, कोई भी चीज में कोई को उत्तेजना आ जाए, विचारों में उत्तेजना आ जाए, वाणी में उत्तेजना आ जाए, जिसको हम कहें गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, उत्तेजित हो गया, क्रोधित हो गया, हमारी सब शक्तियां उसमें नष्ट हो जाती हैं। कोई भी कर्म इंद्रियों के अंदर तनाव पैदा हो गया, तुरंत उत्तेजित हो जाएंगे। अगर सेवा में इन कर्म इंद्रियों को लगाया है तो ये कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी। यज्ञ स्नेही बच्चे अपनी एक एक कर्म इंद्री पर ध्यान दें, उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं, उत्तेजित कभी नहीं होती। और दूसरा उसका साथी है, भाई है, आवेश का भाई है, आवेग, वेग आ जाता है, तेज। और जब विकारों का आवेग आता है उस समय अपने आप को कंट्रोल कर लेना, इसके लिए बाबा की बहुत शक्ति चाहिए, नहीं तो माया उसी समय बहुत गलतियां कराती है, पाप कर्म करा देती है। एक सेकंड का आवेग कई कितने समय के पुरुषार्थ पर पानी फेर देता है। ध्यान देना इस बात को, मैं अंडरलाइन करा रहा हूं कि यदि आपने इन तन की शक्तियों को बाबा की सेवाओं में लगाया है, यज्ञ सहयोगी बन करके रहे हैं, हाथों से कर्माएं सेवा की हैं, जो जरूरत पड़ी, ऐसे नहीं ये सेवा मेरी थोड़ी है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं तो इस पोस्ट पर हूं, हमारे पास पोस्ट वाले भाई जब आते हैं, कभी कभी मुझे पता होता है ये इस पोस्ट पर हैं, लेकिन मधुबन में तो सब प्रकार की सेवाएं स्थूल होती हैं। तो एक बार बहुत बड़ा ऑफिसर एक आया हुआ था और उसको सेवा में भेज दिया गया, ओम शांति भवन की सेवा। भाई ने जिसने भेजा उसको ये था कि ओम शांति भवन में जाएगा तो वहां गाइड करेगा, लोगों को ज्ञान सुनाएगा, पढ़ा लिखा है, बड़ा ऑफिसर है, इसके आगे पीछे सैकड़ों लोग रहते हैं, तो इसको क्या सेवा दूं। तो उसने बड़ी भावना से उसको ओम शांति भवन की सेवा पर भेज दिया, लेकिन उस सेवाधारी को ये नहीं बताया ये कौन है जिसके पास भेजा। उसने सोचा कि उसको बताऊंगा तो उसे सेवा लेने में डरेगा, तो उसको बताया नहीं। और जब वो भाई वहां पहुंचा सेवा के लिए तो सबसे पहले उसके हाथ में एक कपड़ा दिया और कहा कि सारे कांच साफ करो, ओम शांति भवन के कांच जो बाहर लगे ना गैलरी में, बोला ये सब साफ करो। और बेचारा गया तो सेवा के लिए था, उसने लिया कपड़ा और सब कांच साफ करने लगा। उसने ये नहीं बताया कि मेरी ये पोस्ट है, मैं ऐसा हूं। उसने सोचा बाबा के यज्ञ में तो झाड़ू लगाना भी बहुत बड़ी सेवा है। आज मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर अगर आप देखें जाएं, अमृतसर का गुरुद्वारा जिन्होंने देखा होगा, तालाब को लोग, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स भी वहां सफाई करते हैं, जूते संभाल करके रखते हैं, वो बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं, बहुत बड़ी सेवा समझते हैं। अरे भगवान के स्थान की, इस गुरुद्वारे की सेवा मिल गई, भाग्य समझते हैं। तो वो व्यक्ति भी बहुत निर्माणता से लिया कपड़ा और सब साफ करने लगा। मेरा अचानक उस पर ध्यान गया, मैंने कहा भाई आपके लिए सेवा थोड़ी है, आपको तो पार्टी समझानी। कहते चुप, बोलना नहीं भाई से, बताना नहीं मैं क्या हूँ, मैं तो बाबा के घर की ये सेवा में बड़ी खुशी अनुभव करता हूँ, मुझे तो लगता है कि मेरा भाग्य है जो भगवान के घर में मुझे ये सेवा करने को मिल रहा है। आप समझ सकते हो कि ऐसे अगर बाबा के निर्माण चित बच्चे यज्ञ की कोई भी सेवा हो, झाड़ू लगाने की हो, टेबल साफ करने की हो, बर्तन मांजने की हो, कई बार बाथरूम भी साफ करने पड़ते, उसकी भी हो, किसी भी प्रकार की सेवा में जो हाजी करके निर्माण चित्त बन करके लग जाते हैं, उनके ऊपर यज्ञ पिता कितना प्रसन्न होता होगा। उनके यज्ञ की सेवा हम कर रहे हैं, भगवान के यज्ञ में हमारा ये तन लग रहा है, कितना बड़ा मेरा भाग्य है। मुझे तो सदा यही नशा रहा, कभी भी कोई भी सेवा के लिए कभी ये मुख ने हाजी के सिवाय ना शब्द नहीं किया। हमारी दादियां बहुत भोले भाले, हम भी भोले, पढ़े लिखे तो थे नहीं, आए बचपन में, बहुत प्यार से ऐसे ऐसे प्यार करके, ऐसे सिर पर ऐसे हाथ फेर करके, चलो चलो बहुत अच्छा, ये सेवा है ये सेवा। सुबह 5 बजे उठा लाती थी, आटा गूंदो, रोटी बनाने मदद करो, चलो पानी गर्म कर दो, बहुत प्यार से, जैसे बच्चों को कहा जाता है। हम लोगों ने सब प्रकार की सेवा में सदा हाँ जी हाँ जी हाँ जी किया। यज्ञ की कोई भी सेवा मिले, चाहे घर में कभी पानी का गिलास भी उठा के नहीं लिया हो, लेकिन बाबा के यज्ञ की सेवा कितना बड़ा भाग्य है। भगवान प्रसन्न हो जाए, यज्ञ पिता प्रसन्न हो जाए, यज्ञ माता प्रसन्न हो जाए, बाकी और क्या चाहिए। आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी अगर यज्ञ माता और यज्ञ पिता को प्रसन्न कर लिया तो, कोई कामना नहीं रहेगी। लेकिन प्रसन्न करने की कला आनी चाहिए। बहनों देखो, कल की आई हुई बहनें मेरे को कहती हैं दरी बिछाओ, मुझे कहती हैं ये काम करो, मैं क्यों करूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ऑफिसर हूं। उनका काम नहीं है ये, जो कह रही हैं उनको बाबा ने सीट दी है, उनको निमित्त स्थान दिया है, उनको पावर मिली है, वो यूज कर रही हैं, भले यूज करें। भाई जी दरी बिछा दो, भाई जी ये प्रबंध कर दो, भाई जी ऐसा व्यवस्था कर दो, कह रही हैं ठीक है। उनको बाबा ने अपनी गद्दी पर बिठाया है। मैं हमेशा टीचर्स बहनों को कहता हूँ, उस भावना से उस नजर से देखता हूँ कि इनको भगवान ने गुरु ने अपनी गद्दी दी है और उसके पीछे वो खुद रहता है। आप सबको ये नशा रहना चाहिए कि जिस निमित्त टीचर को बाबा ने मेरे लिए रखा है उसके पीछे वो खुद है। वो कैसी भी है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, कोई योग्यताएं हैं या नहीं है, लेकिन उसके पीछे कौन है। कहते हैं विक्रमादित्य का आसन, उसकी बहुत बड़ी महिमा थी। विक्रमादित्य के आसन पर कोई भी अनाड़ी भी बैठ जाए तो बहुत अच्छे अच्छे निर्णय करता था। कहते हैं जब विक्रमादित्य का राज्य पूरा हुआ तो उस आसन को किसी एक जंगल में किसी स्थान पर गाड़ दिया गया, जमीन में, तो वहां पर जो जानवर चराने वाले चरवाहे भाई होते हैं, एक बहुत छोटा बच्चा अपने बैलों को गायों को बकरियों को चराने जाता था, और जब उस सिंहासन के पास पहुंचता था उस टीले पर, वहां बैठ करके बड़े विद्वत्ता पूर्वक बात करता था, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाता था। लोग आते थे, कहते थे यहां पर आने के बाद इसको क्या हो गया, कितना विद्वान है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। तो लोगों को शक पड़ा कि यही स्थान पर क्यों कह रहा है। बाहर जाता है तो कुछ उसको पता नहीं, बड़ा भोला बड़ा सीधा, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ जानता नहीं। तो लोगों ने उसकी जांच की, वहां पर विक्रमादित्य का आसन छिपा हुआ था। उस आसन की इतनी बड़ी विशेषता थी कि उस आसन पर जो बैठ जाए या आसन के ऊपर जो आ जाए उसकी बुद्धि यथार्थ निर्णय देने लगती थी, सही सही बातें करने लगती थी। तो ये जो आसन बहनों को बाबा ने दिया है, ये विक्रमादित्य का आसन, किसका आसन है, एक ही वो आत्मा जो श्री नारायण की आत्मा है, द्वापर में विक्रमादित्य के रूप में राज्य करती आकर के, आदि मध्य और अंत बाबा ने उसकी जीवन कहानी सुनाई है। लास्ट जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा बनी, शिव बाबा का रथ बनी, भविष्य में जाकर के वो श्री नारायण बनी, और पुनर्जन्म लेकर के द्वापर में वही विक्रमादित्य बनी। उसने जिस स्थान पर मुरली चलाई, जिस स्थान से बच्चों को पढ़ाया पालना दी, वो स्थान, ये गुरु की गद्दी का स्थान बाबा ने अपनी सब बहनों को, अपनी बच्चियों को दिया है, टीचर्स को दिया है, इसलिए सीट को सलाम। वो जो कह रही हो ठीक है, उसमें हमारा भला है, कल्याण है, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं जानती है, इसको तो अनुभव ही नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रश्न करके सेवाओं से वंचित नहीं हो जाना। ये यज्ञ पिता का घर है, यज्ञ पिता ने यज्ञ रचे हैं विश्व परिवर्तन के लिए, महान कार्य के लिए, और उसमें हमारा तन सफल हो जाए कैसे भी लग जाए, बड़ा भाग्य है। माताएं सदा ध्यान रखो कि बाबा के कार्य में कहीं न कहीं लग जाएं हम। चाहे रोटी बनाओ, चाहे सब्जी काटो, चाहे अनाज साफ करो, चाहे कोई सेवा करो, यज्ञ सेवा है, ये बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि भगवान की स्थापना में मदद हो रही है। और इस भावना से अगर बहुत दिल से अपना यज्ञ समझ करके किसी ने तन सफल किया है, उसका तन निरोगी है, उसका आवेग समाप्त है, उसके अंदर आवेग नहीं आएगा, वो कभी भी माया के अधीन नहीं हो सकता, उससे विकर्म नहीं होंगे। और अगर किया ही नहीं सेवा, सिर्फ योग किया है, सेवा में तन नहीं लगाया है, तो कभी भी माया प्रवेश कर सकती है, आवेग आ सकता है, और आवेग कई प्रकार के अवज्ञाएं करा देता है। इसलिए तन बाबा के कार्य में जिसने लगाया, जितना समय लगाया, जब समय मिला चांस ले लिया, हाँ जी कर दिया, बाबा के यज्ञ की सेवा, बड़ा भाग्य है मेरा। उसके बाद मन, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा चंचल है, नुकसान कर देता है, भटक जाता है, एकाग्र नहीं होता, बैठते हैं याद में कहाँ कहाँ ले जाता है कंट्रोल सबका मन के ऊपर, जब चाहो सेकंड में स्टॉप हो जाए। मन को कहो चल अभी तुम वतन में बाबा के पास पहुंच जाए, एक बहुत अच्छा वाहन है, यात्रा कराने वाला है, लेकिन उस वाहन का प्रयोग करने वाला मालिक उसको क्या भोजन खिलाता है, उसकी कैसी सेवा करता है, विचार करना। यदि ब्राह्मण जीवन में 5 साल 10 साल 15 साल ज्ञान में चलते हुए अगर मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, अगर मेरा योग नहीं लग रहा है, ये मन भटक रहा है, माना मैंने इस मन को अच्छा भोजन नहीं दिया है। रोज सवेरे सवेरे नियम पूर्वक इसको बहुत अच्छी खुराक चाहिए, अच्छी खुराक। अच्छी खुराक माना ये नहीं कोई स्थूल भोजन करते रहो, मन के चिंतन के लिए अच्छा अच्छा ज्ञान का खजाना, मनन करो, चिंतन करो, अच्छे से संकल्पों में आ जाओ, मन को अच्छा भोजन मिल गया, शक्तिशाली हो जाएगा, कहना मानेगा। ध्यान रखो कि मन बाबा की मर्यादाओं की लकीर के अंदर के बाहर न जाए, उसको बाउंड्री दे दो। कहते हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण रेखा, वो लक्ष्मण नहीं थे, स्थूल में कोई लक्ष्मण ने रेखा नहीं खींची, लेकिन हरेक को बाबा लक्ष्मण का टाइटल देता है, हे मेरे लक्ष्मण, मन को लक्ष्य दो, रेखा खींचो, हे मन तुम इस लक्ष्य के बाहर नहीं जा सकता है, कितना भी माया का बहुरूप सामने आ जाए, अगर मन इस रेखा से बाहर निकल गया, कौन सी रेखा, श्रीमत, ईश्वरीय मर्यादाएं, उस रेखा से अगर मन सेकंड भी बाहर गया, अंगूठा भी बाहर निकाला, तो रावण हल ले जाएगा, वो तो बैठा ही ताक में कि कब ये श्रीमत का थोड़ा सा उल्लंघन करें। मन से उल्लंघन होता है सबसे पहले, कर्म इंद्रियों तक बात बाद में आती है, बोल तक बात बाद में आती, बीज है मन, संकल्प। इसलिए बीज पर बहुत ध्यान चाहिए, बीज शक्तिशाली है तो बोल और कर्म का फल और फूल अच्छा होना ही है। बीज ही नेगेटिव है, बीज ही कीड़े वाला है, बीज में ही कितने दुर्गुण भरे हुए हैं, तो बोल कैसे होंगे और कर्म कैसे होंगे, सोच सकते हो। यदि यज्ञ स्नेही आत्मा है हम बाबा के बच्चे, तो सबसे बड़ा सहयोग है इस समय के अनुसार मन के अंदर इतने सकारात्मक चिंतन किए जाएं जो मन एक सुंदर वातावरण को क्रिएट करे। इस वर्ष का होमवर्क है, शायद आप सब के ध्यान पर आया हो, बच्चे वृत्तियों से वातावरण को चेंज करो, वृत्तियों से वायुमंडल को बनाने की सेवा करो। कैसे करेंगे, अगर मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वृत्ति शुद्ध हो सकती है, वृत्ति बनी कैसे, वृत्तियां जो बनती हैं वो मन के अंदर जो बात व्रत के रूप में, ऐसे घेरा के रूप में, जो संकल्प घेरे की रूप में बार बार इमर्ज होते रहते हैं, कंट्रोल जिन पर नहीं रहता, बात थोड़ी सी है वो मन के अंदर बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, उसकी वृत्ति बन गई। और वो वृत्तियां जो चित्त के अंदर चली जाती उसके द्वारा एक ओरा बनता है और उस ओरे से वातावरण क्रिएट होता है। यदि किसी स्थान पर बहुत नेगेटिव सोचने वाले हों, हिंसक वृत्ति वाले हों, आप थोड़ा कॉन्ट्रास्ट अनुभव करते होंगे। एक बार का मैं मिसाल बताता हूं। हम लोग दिल्ली में शुरू में खरीदारी करने के लिए जाते थे यज्ञ की तरफ से, तो पैसा बचाने के लिए एक बार हमने कहा हम पैदल चलते हैं। पैदल रास्ता मालूम नहीं था, दो भाई थे हम, तो हम अपने पांडव भवन से निकले, दिल्ली में रहते थे वहां, मार्केट के लिए पैदल जाएंगे, क्यों 15-20 रुपए हम खर्च करें रिक्शे के। तो हम पैदल जा रहे थे तो पैदल एक गली में हम चले गए, हमको पता नहीं था ये गली कैसी है। और वो गली इतनी दर्दनाक, उसके अंदर जाते ही भय लगने लगा। कोई हमारे संकल्प नहीं था, अचानक हम गए तो उसमें कितने प्रकार के हिंसा हो रही थी। माना जो मांस मदिरा खाने वाले होते हैं, बकरे कटे हुए लटके हुए थे, क्या क्या लगा था, इतना गंदा वातावरण था जो एकदम जाते ही बेचैनी हो गई। उस स्थान से निकलते ही ऐसे लिए कब निकल पाएंगे यहाँ से। करीब 20 मिनट तो क्रॉस किया होगा वो गली को, उस गली में इतना भय लगे, इतना एक वातावरण भारी था, आप समझ सकते हो उस वातावरण को क्रिएट किसने किया, उस वातावरण को क्रिएट किसने किया। कोई ने हमको कहा नहीं, कोई हमको डराने वाला नहीं, कोई हमको बोलने वाला नहीं, लेकिन उस स्थान से क्रॉस करने में ही इतना भय लग रहा है, इतना नेगेटिविटी महसूस हो रही है, इतना भारीपन लग रहा है। कारण वहां जो रहने वाले, जो ऐसा कार्य करने वाले, उनकी वृत्तियों में वो संस्कार बने हुए हैं और उनके कारण वो वातावरण को एकदम भयभीत करने वाला बना दिया। कितने दुखी होते होंगे, पशु पक्षियों में भी तो आत्मा है ना, जब उनको काटते होंगे, जब मारते होंगे, कितना उनका दर्द होगा। अगर आप किसी एक सुंदर स्थान से, जहां पूजा हो रही हो, जहां घंटे बज रहे हो, जहां आरतियां हो रही हो, उस स्थान से क्रॉस करो, क्या होता है, मन आनंदित होने लगता है, खुशी में नाचने लगता है, बड़े अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। स्थान वातावरण को बनाता है, लेकिन स्थान वातावरण को कैसे बनाता है। आज मधुबन का वातावरण पांडव भवन में आप चले जाओ, नया भी चला जाए, पहली बार वाला कुछ पता नहीं है उसमें क्या हुआ है, लेकिन पांडव भवन के अंदर जाते ही उसको ऐसा लगता है जैसे अपने घर में आ गए। बहुत शांति है, बहुत प्यार है, बहुत पवित्रता है, बहुत शक्ति है। ये जो वातावरण बना है, ये जो वायुमंडल वहां का क्रिएट हुआ है, कैसे हुआ, हमारी वृत्तियों से। बाबा ने तपस्या की, दादियों ने तपस्या की, शुद्ध संकल्पों का घेरा बनाया और उस घेरे से वातावरण बन गया। आप जिस स्थान पर रहते हो, अगर उस स्थान को आप निर्विघ्न बनाना चाहते हो, तो सबसे अच्छी सेवा ये है कि अपने अंदर, मन के अंदर कोई भी दूषित विचारों को प्रवेश करने की मना कर दो। मना है, नहीं आ सकते हो। कोई भी नेगेटिव विचार मुझे नहीं करना है, कोई भी व्यर्थ बातें मुझे नहीं करनी है, वातावरण अपने आप शक्तिशाली बन जाएगा। यज्ञ की सबसे बड़ी सेवा है सेवाधारी बच्चे जहां पर भी रहे यज्ञ के प्रति सदा शुभ सोचे, सदा अच्छा सोचे। अगर कोई आपको बुरा भी सुनाए ना, यज्ञ में ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा किया, बाबा कहता कान बंद कर दो, नहीं सुनना, ये काम मेरा नहीं है। अगर किसी ने किया होगा तो अपने आप पाएगा, मुझे उसका चिंतन वर्णन नहीं करना, नहीं तो मेरे ऊपर उसका बोझ चढ़ जाएगा, पाप चढ़ जाएगा। कोई सुनाए तो भी कहो कि बाबा ने कहा है कि अगर ऐसी व्यर्थ बातें करना, माना वो संग दुश्मनी का है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं बोलना, ये मन अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर मन को बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया, मन को बाबा की श्रीमत के अनुसार उसकी रेखा के अंदर ले आए, तो ये मन बहुत सदोरा हो जाएगा, बड़े अच्छे अच्छे विचार करेगा, बड़े अच्छे अच्छे संकल्प करेगा और आपको बहुत अच्छे स्थान पर सैर कराएगा। कभी आप सूक्ष्म वतन की सैर करो, कभी आप मूल वतन की सैर करो, कभी आप अपने वैकुंठ धाम की सैर करो, कभी मंदिर में मूर्ति की तरफ चले जाओ, देवी देव कुल की, गांव की कुल देवी, गांव का कुल देवता कितनी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी कर रहा है, कितनी आशाएं पूरी कर रहा है। किसी स्थान पर जाकर के भक्तों की सेवा करके आ जाओ, ये मन आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराएगा। लेकिन मन को बाबा के यज्ञ में समर्पित किया है, स्वाहा किया है, स्वाहा स्वाहा, बाबा के स्वाहा करो, यज्ञ माना स्वाहा, व्यर्थ को स्वाहा करो, नेगेटिव को स्वाहा करो, विकल्पों को स्वाहा करो, आपका मन मनाभो हो जाएगा। बाबा ने जो कुछ दिया है धन, ये बाबा की अमानत है। हमेशा प्रवृत्ति में रहते हुए ध्यान रखना इस अमानत पर किसी चोर की नजर न लग जाए, ये प्रभु की अमानत है, माया की इस पर नजर न लगे। कहीं पर भी एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जा सकता है, ये बाबा का है, मैंने बाबा को अर्पित किया और बाबा ने कहा बच्चे तुम इसको संभालो, यथार्थ स्थान पर सफल करो। आज भी बाबा की मुरली में एक था, सफल करोगे तो सफलता मिलेगी, सफलता के लिए सफल करना एक विधि है। ये हमारा धन बाबा के यज्ञ में सफल हो जाए, थोड़ा भी अगर सफल कर लिया, भगवान हमारे स्नेह में उसका रिटर्न देने के लिए बन जाएगा। कई बार बाबा कहता है मैं बहुत बड़ा सर्राफ हूँ, सर्राप समझते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे किसका सफल कराना है किसका नहीं कराना मुझे पता है। अगर कोई बच्चा मेरा सच्चा है, दिल से कहता है बाबा सब तेरा है, उसका सब सफल हो जाता है। और सोचता रहता है बहुत लोग करने वाले हैं, यज्ञ में तो बहुत पैसा आता है, अगर हमने नहीं किया तो क्या हुआ, बाबा कहता तेरे की पैसे की जरूरत ही नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। सोच सोच करके जब बकरे की बलि देते हैं तो महाप्रसाद किसका बनता है, जो एक धक से मर जाता है। अगर सोच सोच करके चिल्ला चिल्ला करके अगर उसके प्राण जाते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो महाप्रसाद नहीं होता। अगर आपको बाबा के यज्ञ में कुछ भी लगाना है, कभी भी सोचना नहीं और पूछना नहीं, क्यों पूछें किसी से। अगर आपका अधिकार है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, गुप्त दान महापुण्य, सफल हो जाए, भगवान की जन्म के लिए बंध जाए रिटर्न करने के लिए। इनडायरेक्ट तो आपने बहुत कुछ भक्ति के अंदर किया है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया। ये संगम का समय डायरेक्ट सफल करने का समय है, बहुत समझदार बन करके, बुद्धिमान बन करके, बाबा के बेहद कार्य में, स्थापना के कार्य में, नई दुनिया बनाने में मेरा कुछ लग जाए, बस स्वाहा हो जाए। गुप्त दान महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य, सोचने वाले का पुण्य नहीं बनता, पूछने वाले का पुण्य नहीं बनता। क्या कहते हैं, आएंगे ग्रुप में 10 लोग आए होंगे, तूने कितना किया, तूने कितना किया, तूने कितना किया, कोई ज्यादा करे यार तुम क्यों इतना करता है, यहाँ तो बहुत है। बाबा कहता है खुद भी पाप किया और दूसरे को भी पाप के निमित्त बना दिया, कभी सोचना नहीं और पूछना नहीं है, बाबा के काम में लग जाए, कब काम आएगा, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोल लूट जाए, किसकी जलाएगी आग, सफली होगी साईं जो नाम धनी के खर्च करे, किसकी सफल होगी। अगर धनी के नाम से कुछ सफल हो गया, भगवान धनी है ना, बाप है हमारा, अगर उसके यज्ञ में मेरा कुछ लग गया तो उसके रिटर्न के लिए वो बंध जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कई भाग्यवान बच्चे अपनी रेखा अपने हाथ से खींच रहे हैं, भाग्य विधाता बाप है लेकिन भाग्य बनाने के लिए कलम बच्चों को देता है सबके हाथ में कलम, कहता मैं तुमको कलम देता हूं, ऐसे नहीं कहता हूं आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, मैं ये आशीर्वाद नहीं देता, ये तो गुरुओं के पास जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देने के साथ साथ समझ देता हूँ, कलम देता हूँ श्रेष्ठ कर्म की, यदि तुम उस श्रेष्ठ कर्म की कलम से श्रेष्ठ कर्म का बीज बो दोगे तो उसका रिटर्न तो मिलना ही है। तो तन मन और धन, उसके बाद चौथी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है समय, संकल्प, श्वास। अगर संकल्प, श्वास और समय ये तीनों शक्तियां हमारी बाबा में लग रही है, माना हम बाबा के सहयोगी बच्चे, यज्ञ सहयोगी बच्चे। संगम का एक एक सेकंड बाबा कहता है कई जन्मों के बराबर है, इसको सफल करना है, व्यर्थ न जाए। संकल्प अगर व्यर्थ चल रहे हैं, माना हमारा संगम का अमूल्य समय नष्ट हो रहा है। कितना समय व्यर्थ बातों में चला जाता है, व्यर्थ सुनने बोलने में चला जाता है। बाबा कई बार अटेंशन खिंचाता, बच्चे प्लीज अटेंशन, प्लीज अटेंशन, संगम के इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दो। कोई कुछ भी कर रहा हो आंख बंद कर लो, देखते भी नहीं देखो, ये ऐसा करता वो ऐसा करता, बाबा का तेरा क्या जाता है, जो करेगा वो पाएगा, तुम क्या कर रहे हो। दूसरे को देखेंगे तो खुद का घाटा पड़ जाएगा, इसलिए कुछ भी हो मुझे नहीं देखना है। ये पांच मंत्र पक्के करके जाना है, अगर मुझे अपने संकल्प, अपने श्वास, अपने समय को सफल करना है तो बाबा ने हमको पांच मंत्रों का कंगन बांधा है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। देह के बारे में, दैहिक दुनिया के बारे में, व्यक्त बातों के बारे में चिंतन करना, उनका वर्णन करना, वो बातें सुनना, वो बातें दूसरों को सुनाना और उसके अनुसार कर्म कर लेना, ये सब व्यर्थ और नेगेटिव है। इसलिए यदि मैं आत्मा बाबा के यज्ञ का सहयोगी हूँ, यज्ञ रक्षक हूँ, तन मन धन मेरा बाबा के कार्य में सफल हो रहा है, तो ध्यान रखना ये बहुत वैल्यूबल चीजें भी बाबा के इस स्थापना के कार्य में सफल हो जाएं। एक एक संकल्प, पॉजिटिव संकल्प हो, जो बाबा ने कहा है वही सोचना है, उतना ही सोचना है। अगर कोई बात दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, बाबा कहता है तुमको मैंने एक ढाल दी है, एक तलवार दी है। ज्ञान तलवार है और ड्रामा की ढाल है। ड्रामा की ढाल सामने ले आओ, ड्रामा कल्याणकारी है, संगम का समय कल्याणकारी है, हमारा बाबा कल्याणकारी है, हर बात में कुछ न कुछ छिपा हुआ कल्याण है। बिंदी भी नहीं लगाओ, यही समझो ये तो कल्याण है। अगर बुराई भी दिखाई दे रही, इसमें भी कुछ कल्याण है। अगर कल्याण की बिंदी लगा दी, आगे बढ़ जाओगे और आपका समय, संकल्प, श्वास बच जाएगा। नहीं तो कैसे व्यर्थ आता है, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, अनेक क्या क्यों कैसे। हमारी दादी, गुलजार दादी, कभी कभी बड़ी हंसी में कहती हैं, एक का 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 की भाषा तो कौआ बोलता है। कौन बोलता है, कौआ बोलता है ना, का 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 का, तुम बच्चे नहीं बोल सकते। क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, कब, क्यों, कहाँ, कब, कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं करो, फुल स्टॉप, जो हुआ अच्छा। अगर अपने मन को, अपने संकल्पों को बचाना है, अपने समय को सफल करना है, तो कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी, न सुननी, न देखनी, न बोलनी। तो इसलिए यज्ञ रक्षक, यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, जहां आवश्यकता है मैं हाजिर। हनुमान की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, राम को जहां जरूरत है वो हाजिर है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिल में रहता, राम के दिल में हनुमान और हनुमान के दिल में राम। तो ऐसे सब पांडव, महावीर बन करके बाबा के कार्य में, स्थापना के कार्य में अपना भाग्य समझ करके, अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सफल करके, जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। अब नहीं तो, अंडरलाइन है ना, अब नहीं तो कब नहीं। मम्मा के दो स्लोगन हमेशा याद रखना, मम्मा का दिन है, कल हम मम्मा का दिन मनाएंगे। मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अब नहीं तो कब नहीं। और दूसरा स्लोगन मम्मा का था, हुकुमी हुकुम चला रहा है। उसका हुकुम, जो हुकुम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उससे नंबर वन बन गई। अगर हम ये दोनों मंत्र पक्का कर लें तो हम बाबा के बहुत स्नेही सहयोगी सपूत बच्चे बनकर बाबा के स्थापना के कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न कर देंगे और बाबा के बहुत समीप आ जाएंगे। अगर बड़ों के बाबा के परिवार के समीप आना है तो समीपता का आधार है बाबा के यज्ञ में निरंतर सहयोग देते चलो। जिस प्रकार की शक्ति है सहयोगी बन जाओ। कोई कहता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे तन में शक्ति नहीं, बाबा कहता कोई छोड़ दो, नहीं है ना, कोई हर्जा नहीं, बैठे बैठे बाबा को याद करो, मन की शक्ति है। अच्छा कहते हो मन भी बड़ा विकारी है, मन भी बड़ा चंचल है, मन भी एकाग्र नहीं होता, बाबा कहता अच्छा छोड़ दो, धन है बाबा के काम में लगा दो। कोई कहे कि बाबा तन कमजोर है, बीमार है, मन बड़ा विकारी है, दूषित है, बुरे संस्कारी है, धन तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूं, फिर भी बाबा छोड़ता नहीं है, फिर भी नहीं छोड़ता है। कहता कोई तो विशेषता है, अनुभव है, कोई शक्ति है, वो अनुभव की शक्ति बाबा के काम में लगा दो। हिम्मत है, सत्यता है, निश्चय है, भगवान के कार्य में किसी तरह से तो मदद करो। जो जिसके पास कला है, जो जिसके पास विशेषता है, जिस प्रकार से यज्ञ में हम सहयोगी बन सकते हैं, हम उसमें अगर थोड़ा सा सहयोग देंगे तो कहते हैं ये अंगुली दे दी तो भगवान का छप्पर उठ गया, कलयुग का छप्पर उठ जाएगा, सत्युग आ जाएगा और आप सेफ हो जाएंगे। बड़ी चतुराई थी भगवान को, इस अंगुली को लगाने का इशारा क्यों दिया, भगवान तो अकेला ही उठा सकता था, इस गोवर्धन पर्वत को तो ऐसे उठा देगा, उसके लिए क्या बड़ी बात है, लेकिन ग्वाल बालों को तूफान आंधी से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए बड़ी युक्ति रच दी कि तुम इसके नीचे आ जाओ और नीचे आने का यही साधन है कि तुम इस सब उंगली लगाओ ये उठ जाए ऊपर। तो ये कलयुगी पर्वत, ये इतनी बड़ी दुनिया परिवर्तन हो जाए, उसके लिए हरेक बच्चे को संकल्प लेना है मैं बाबा का स्नेही सहयोगी बच्चा बन करके अपनी एक अंगुली ऐसे लगा दूं, मैं सेफ हो जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा, बाबा के समीप आ जाऊंगा और ये कलयुगी पर्वत परिवर्तन हो जाएगा। और सत्युग तो आया कि आया, आज नहीं तो कल आना ही है, निश्चित है ना कि नहीं आएगा, आएगा ना, सबको विश्वास है ना, हमारी स्वर्णिम दुनिया आई की आई और ये कलयुग अब गया की गया। जहाँ इतनी पवित्र आत्माओं का संगठन है, जहाँ इतनी ज्ञानी और योगी आत्माएं तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या की शक्ति से इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलेगी और ये कलयुगी दुनिया भस्म हो जाएगी। और जब ये कलयुग भस्म होगा तो हमारा सत्युग आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी तपस्या करके इस यज्ञ से इतनी ज्वाला प्रज्वलित करो, लगन की अग्नि की ज्वाला से सारी दुनिया परिवर्तन हो और हमारी गोल्डन दुनिया इस सृष्टि पर आए, सबको सुख मिले, चैन मिले, शांति मिले, पवित्रता का वरदान मिले, ऐसी शुभ भावना रख करके यज्ञ स्नेही सहयोगी रक्षक बन करके बाबा की इस भट्टी से संकल्प करके जाना कि हम सदा सहयोगी रहेंगे, सदा स्नेही रहेंगे और यज्ञ की हर प्रकार से रक्षा करेंगे। ओम शांति।